कार्यक्रम सत्यवचन में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, इन दिनों हम अपने इस कार्यक्रम में बाइबल अध्ययन कर रहे हैं यहोशू नामक पुस्तक की। इस पुस्तक का नाम इसराइलियों के एक वीर पुरुष यहोशू के नाम पर रखा गया, जिसका इब्रानी भाषा में अर्थ है यहोवा उद्धार। श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि इस पुस्तक के अध्ययन से आप सभी को आत्मिक लाभ अवश्य पहुँच रहा होगा। तो बराबर परमेश्वर के वचन के अध्ययन में हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं उन श्रोता भाई बहनों का स्वागत करता हूं जो पहली बार आज हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मित्रों, मैं कुशल पूर्वक हूं और आशा करता हूं कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इन दिनों यहोशू की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने कालेब का चरित्र विश्लेषण किया और देखा कि वह पूरे मन और जान से परमेश्वर में विश्वास योग्य रहा, अर्थात परमेश्वर में वह विश्वास रखता था। उसमें अतीत को भुला देने और सच्चाई का सामना करने का विश्वास था और भविष्य की आशा उसमें वास करती थी। उसका विश्वास अटल था। मिस्र से निकल आने वाली संपूर्ण पीढ़ी में केवल वह और यहोशू ही थे जो प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश कर पाए। और अब प्रतिज्ञा के देश में उसे हेब्रोन का क्षेत्र दिया जाता है और यहोशू उसे आशीर्वाद देता है। तो आइए आज हम अपने अध्ययन में और आगे बढ़ने से पहले परमेश्वर से सहायता मांगे और प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के लिए जो आपके जीवित वचन को इस रेडियो के माध्यम से सुनते और अध्ययन करते हैं। हमारी विनती है प्रत्येक भाई बहन के लिए कि आप उन पर अपनी आशीष प्रदान करें, उन्हें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ दें, ताकि एक एक जो आपके वचन को सुनता है, सुनती है, आपके वचन के द्वारा आशीष को अपने जीवन में प्राप्त करने पाए। इस समय जब हम कालेब और यहोशू के जीवन से सीख रहे हैं, होने दे प्रभु कि हमारे जीवन में भी इनके जीवन का प्रभाव आने पाए, ताकि हम आप पर भरोसा कर सकें, आपसे प्रेम कर सकें और अपने जीवन को उनके अनुसार से चलाने पाएं। विशेष प्रार्थना है हमारे उन भाई बहनों के लिए जो इस समय अपने जीवन से दुखी हैं, निराश हैं, बीमार हैं, नौकरी की तलाश में हैं, अपने जीवन साथी की तलाश में हैं, या बीमारी से तंग आ चुके हैं, कर्ज से दबे हुए हैं, आर्थिक स्थिति डगमगा गई है। हमारे उन लोगों के लिए भी प्रार्थना है कि आप उनकी भी सहायता करें, क्योंकि प्रभु आप वही परमेश्वर हैं जो सदैव सबसे प्रेम करते हैं। पिताजी, आप उन पर अनुग्रह करें और आज के इस वचन के दौरान से बातचीत करें, ताकि वे भी यहोशू और कालेब के समान खड़े होने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु हमसे बातचीत करने के लिए और हम सबकी सहायता करने के लिए। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, अध्याय 15 से अध्याय 19 में इसराइल के गोत्रों में भूमि का बंटवारा किया जा रहा है। यर्दन नदी के पश्चिम भाग का क्षेत्र इसराइल के नौ और मनश्शे के आधे गोत्र में बांटा गया था। अध्याय 15 में यहूदा का भूभाग, अध्याय 16 में एप्रेम का भूभाग और अध्याय 17 में मनश्शे का भूभाग और अध्याय 18 तथा 19 में शिमोन, जबुलोन, इस्साकर, अशेर, नप्ताली और दान के भूभाग का उल्लेख है। इसराइल के लिए यह भाग बहुत ही महत्वपूर्ण है, परंतु हमारे लिए इसका महत्व ऐसा महान नहीं है, अतः हम केवल मुख्य बातों पर ध्यान देंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखें यहूदा के गोत्र को दिया गया भाग। अध्याय 14 में हमने देखा था कि कालेब यहूदा के गोत्र का अंग था और परमेश्वर ने उसे हेब्रोन नगर दिया था। अध्याय 15 में इस विशिष्ट पुरुष के बारे में और भी बहुत कुछ कहा गया है और इस अध्याय में यहूदा के गोत्र को दिया गया प्रदेश उल्लेख किया गया है। तो आइए हम देखें यहोशू 15 अध्याय उसके 13 और 14 पद। यहोशू 15 अध्याय 13 और 14 पद। और यपुन्ने के पुत्र कालेब को उसने यहोवा की आज्ञा के अनुसार यहूदियों के बीच भाग दिया, अर्थात क्रियतरबा, जो हेब्रोन भी कहलाता है, वह अरबा अनाक का पिता था और कालेब ने वहां से शेशे अहिमन और तलमय नाम अनाक के तीनों पुत्रों को निकाल दिया। मेरे मित्रों, यहां आप देखते हैं कि कालेब दैत्यों का स्थान मांगता है, अर्थात जो वहां पर दानों के रूप में लोग रहते थे, जो बहुत भीमकाय थे, उस स्थान को मांगता है और वह उन पर विजयी होने के लिए अब भी वही मनोवेग रखता है, अर्थात उसके मन में किसी प्रकार का कोई शंका नहीं है। जो उसमें व्यवस्था के समय था वह आज भी वैसा ही बना हुआ है और अपने विश्वास में दृढ़ है। हम आगे पढ़ते हैं यहोशू 15 अध्याय उसके 15 से 19 पद में लिखा है, फिर वहां से वह दबीर के निवासियों पर चढ़ गया। पूर्व काल में तो दबीर का नाम किरियत सेपेर था और कालेब ने कहा, जो किरियत सेपेर को मार ले गया उसे मैं अपनी बेटी अक्षा को ब्याह दूंगा। तब कालेब के भाई उतनियल कंजी ने उसे ले लिया और उसने उसे अपनी बेटी अक्षा को ब्याह दिया। और जब वह उसके पास आई तब उसने उसको पिता से कुछ भूमि मांगने को उभारा। फिर वह अपने गधे पर से उतर पड़ी और कालेब ने उससे पूछा, तू क्या चाहती है? वह बोली, मुझे आशीर्वाद दे, तूने मुझे दक्षिण देश में की कुछ भूमि तो दी है, मुझे जल के सोते भी दे। तब उसने ऊपर के सोते नीचे के सोते दोनों उसे दे दिए। मेरे मित्रों, यहूदा के गोत्र को दिया गया भूभाग अध्याय के आरंभ में स्पष्ट किया गया है। उसके बाद शहरों का उल्लेख किया गया है। मानचित्र में उन्हें देखना कठिन होगा क्योंकि वे नेगेब में हैं। हम आगे देखते हैं एप्रेम को दिया गया भूभाग। यूसुफ याकूब के 12 पुत्रों में से एक था, अतः उसके पुत्र एप्रेम और मनस्से को दो गोत्र माना गया था। अब क्योंकि लेवी गोत्र को भूमि नहीं दी गई है, इसलिए भूभाग पाने वाले गोत्र 12 ही थे, जबकि इसराइल के गोत्रों की संख्या कुल 13 थी। यहोशू की पुस्तक 16 अध्याय उसके 1-4 पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, फिर यूसुफ की संतान का भाग चिट्ठी डालने से ठहराया गया। उनका सिवाना यरेहो के पास की यर्दन नदी से, अर्थात पूर्व की ओर यरेहो के जल से आरंभ होकर उस पहाड़ी देश से होते हुए जो जंगल में है बेतेल को पहुंचा। वहां से वह लूज तक पहुंचा और एरेकियों के सिवाने होते हुए अतारोत पर जा निकला और पश्चिम की ओर यपलेतियों के सिवाने से उतरकर फिर नीचे वाले बेयोरोन के सिवाने से होकर गेजेर को पहुंचा और समुन्दर पर निकला। तब मनशे और एप्रेम नाम यूसुफ के दोनों पुत्रों की संतान ने अपना भाग ले लिया। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम मनशे को दिया गया भूभाग को देखते हैं। आपको स्मरण होगा कि मनशे का आधा गोत्र यर्दन के पूर्वी तट पर बस गया था, दूसरा आधा गोत्र यर्दन पार करके पश्चिम क्षेत्र में आ गया था, अतः उन्हें भूमि का यह भाग प्राप्त हुआ। इस अध्याय में यूसुफ के वंशजों की एक असामान्य घटना इस अध्याय में व्यक्त है, विशेष करके एप्रेम के बारे में। हम यहोशू 17 अध्याय उसके 14 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, यूसुफ की संतान यहोशू से कहने लगी, हम तो गिनती में बहुत हैं, क्योंकि अब तक यहोवा हमें आशीष ही देता आया है, फिर तूने हमारे भाग के लिए चिट्ठी डालकर क्यों एक ही अंश दिया है? मित्रों, यहां पर हम देखते हैं कि एप्रेम के सदस्य शिकायत कर रहे थे कि उन्हें दिया गया भूभाग या भूमि बहुत कम था, और यह सच ही है कि एप्रेम को जो भाग मिला वह वास्तव में मनश्शे को दिए गए भूभाग का लगभग आधा ही था। एप्रेम की जनसंख्या बहुत अधिक थी, यहोशू इसी गोत्र का सदस्य था, अतः एप्रेमियों ने सोचा कि वह निश्चय ही कुछ करेगा, परंतु यहोशू ने कुछ नहीं किया। उनके भाग में आया क्षेत्र पर्वतों का था। मित्रों, मैंने बहुतों को यह कहते सुना है कि वह क्षेत्र वास्तव में एक कठोर स्थान है, अतः वे संतुष्ट नहीं थे। यहोशू 17 अध्याय उसके 15 पद में लिखा हुआ है, हम पढ़ते हैं, यहोशू ने उनसे कहा, यदि तुम गिनती में बहुत हो और एप्रेम का पहाड़ी देश तुम्हारे लिए छोटा हो तो परिज्जियों और रपाइयों का देश जो जंगल है उसमें जाकर पेड़ों को काट डालो। मेरे मित्र, आप यदि वहां का भ्रमण करें तो आप देखेंगे कि वह स्थान सूखे पर्वतों का क्षेत्र है। जंगलों का क्या हुआ? शताब्दियों से वहां आने वाले वैरियों ने उन पर्वतों को पूरी तरह उजाड़ दिया है। आज वहां वृक्षारोपण का अभियान चल रहा है और जब वहां पर लोग जाते हैं तब पाते हैं कि उन्हें 5 वृक्ष रोपना पड़ता है। 1 वृक्ष अपने नाम पर, 1 वृक्ष पत्नी के नाम पर और 1 वृक्ष बच्चे या बेटे और बेटियों के नाम पर। कली से ऐसे कई लोग वहां घूमने के लिए जाते हैं और वहां पर पेड़ रोपते हैं। क्यों? क्योंकि वह स्थान उजाड़ पड़ा हुआ है, वहां पर हरियाली नहीं है, क्योंकि वह स्थान कभी हरा भरा था। मेरे मित्रों, हम देखते हैं कि मसीह के युग में तो जैतून पर्वत भी हरा भरा था। यदि उस समय वहां वृक्ष आज के समान जहां तहां होते तो उसके वैरियों को उसे खोजने में कठिनाई नहीं होती। उन्हें यहूदा की आवश्यकता भी नहीं पड़ती कि वह उन्हें जंगल में मार्ग दिखाए और यीशु के पास पहुंचाए। अपने गोत्र को दिया गया यहोशू का उत्तर अति विनम्र था। हम यहोशू 17 अध्याय उसके 17 और 18 पद में पढ़ते हैं। फिर यहोशू ने क्या एप्रेमी क्या मनश्शेई अर्थात यूसुफ के सारे घराने से कहा, हाँ तुम लोग तो गिनती में बहुत हो और तुम्हारी बड़ी सामर्थ्य भी है, इसलिए तुमको केवल एक ही भाग न मिलेगा, पहाड़ी देश भी तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि वह जंगल तो है परंतु उसके पेड़ काट डालो, तब उसके आसपास का देश भी तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि चाहे कनानी सामर्थी हो और उनके पास लोहे के रथ भी हो तो भी तुम उन्हें वहां से निकाल सकोगे। मेरे मित्रों, यहोशू ने उनसे कहा, यदि तुम अपने विरासत से संतुष्ट नहीं हो तो पर्वतों पर अधिकार कर लो, परंतु ध्यान रहे कि वहां दैत्य वास करते हैं अर्थात बलवंत लोग भी वास करते हैं। तुम्हें परिश्रम करना होगा, तुम्हें युद्ध करना होगा और कीमत भी चुकानी होगी। मेरे मित्रों, कई बार हम शिकायत करना नहीं छोड़ते हैं। हम शिकायत करना छोड़ें और भूमि ग्रहण करना आरंभ करें। एक बार एक महान प्रभु के दास ने छुट्टियां बिताने के लिए ग्रामीण क्षेत्र को चुना और रविवार के दिन वह वहां के आराधनालय में गया। वहां का प्रभु का दास उन्हीं के प्रकाशित उपदेश को शब्दांश दोहरा रहा था। आराधना के बाद जब वह पास्टर या प्रभु का दास कलीसिया से भेंट कर रहा था तब इस आगंतुक ने अर्थात अतिथि ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हे जवान, मुझे आपका उपदेश बहुत अच्छा लगा। आपको इस संदेश को तैयार करने में बहुत समय लगा होगा। कितना समय लगा? ओह, मुझे केवल 3 घंटे लगे थे। यह बड़ी विचित्र बात है, उस प्रचारक ने कहा, मुझे उस उपदेश को तैयार करने में 8 घंटे लगे थे। मेरे मित्रों, आत्मिक उत्तराधिकार और आशीषों को प्राप्त करने में परिश्रम करना पड़ता है। वर्षों पूर्व मेरा एक मित्र था जो सेवा में आया। वह कलीसिया में 3 वर्ष सेवा करने के पश्चात मेरे पास भेंट करने के लिए आया। मैंने उससे पूछा कि वह अध्ययन में और उपदेश तैयार करने में कितना समय लगाता है। उसने कहा कि वह अध्ययन में समय नहीं लगाता और उपदेश तैयार करने में उसे लगभग 1 घंटा लगता है। यह उसकी समस्या थी। मुझे उपदेश तैयार करने में अधिक से अधिक 4-5 घंटे अवश्य लग जाते हैं। आत्मिक आशीषों को पाने के लिए आपको परिश्रम करना होता है, परंतु स्मरण रखें कि एक बैरी है, एक दैत्य है, एक दानव है, एक शैतान है जो अवसर ढूंढता रहता है कि वह आपको ठोकर खिलाए। मेरे मित्र, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे एक दोस्त ने एक बार अपने प्रोफेसर से अध्ययन हेतु की गई पुस्तक के बारे में शिकायत करते हुए कहा कि वह धूल के समान अरुचिकर थी। कहने का मतलब है कि बिल्कुल बेकार थी। उस प्रोफेसर ने कहा, तुम उसे अपने माथे के पसीने से नमी प्रदान करो। यह कठोर परिश्रम का विवाद है। मित्रों, यहोशू अपने गोत्र से कहता है, मुझसे शिकायत मत करो, आगे बहुत भूमि है, जाकर उस पर अधिकार करो, मेहनत करो और अपने वश में कर लो। हम देखते हैं कि शीलो में मिलाप वाला तंबू खड़ा किया जाता है। यहोशू 18 अध्याय उसके एक पद में लिखा है, फिर इसराइलियों की सारी मंडली ने शीलो में इकट्ठी होकर वहां मिलाप वाले तंबू को खड़ा किया, क्योंकि देश उनके वश में आ गया था। मेरे मित्रों, इसराइल ने एप्रेम के एक नगर शीलो में मिलाप वाला तंबू खड़ा किया। वह स्थान केंद्र भाग न होने के कारण मिलाप वाले तंबू का स्थायी स्थान नहीं था। परमेश्वर दाऊद के द्वारा एक स्थायी स्थान चुनेगा जो एक दिन यरूशलेम होगा, परंतु तब तक इसराइल शीलो में ही आराधना करेगा। मिलाप वाला तंबू न्यायियों के युग में शीलो में ही रहा। तो आइए हम आगे देखते हैं शेष भूभाग का विभाजन। यहोशू इसराइल को अब चुनौती देता है। यहोशू 18 अध्याय उसके 2 और 3 पद में हम पढ़ते हैं, और इसराइलियों में से 7 गोत्रों के लोग अपना अपना भाग बिना पाए रह गए थे। तब यहोशू ने इसराइलियों से कहा, जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है उसे अपने अधिकार में कर लेने में तुम कब तक ढिलाई करते रहोगे। मेरे मित्रों, 7 गोत्र हाथ पर हाथ रखे बैठे थे और यहोशू से कह रहे थे, इस भूमि का क्या होगा, तू हमारे भाग में क्या दे रहा है। यहोशू ने उनसे कहा, तुम्हारा भाग तुम्हारे नाम पर आया है, जाकर उस पर अधिकार करो, कब तक तुम सुस्त और आलसी बैठे रहोगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर भी हमें ऐसी ही चुनौती देता है। उसने हमें सब आत्मिक आशीषें दी हैं, परंतु जब उन पर अधिकार करने का समय आता है तब हम सुस्त हो जाते हैं। परमेश्वर हमारे साथ कैसा भला कर रहा है। हमें उसके अनुग्रह, उसके प्रेम, उसकी भलाई और उसकी दया के लिए कैसे आभारी होना है। वह कैसा महान परमेश्वर है। हम आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं, उसके द्वारा दी गई उस भूमि पर अधिकार कर लें। मेरे मित्रों, परमेश्वर चाहता है कि उसके दिए हुए हर एक आशीष को आप प्राप्त करें, लेकिन कई बार हम इन चुनौतियों का सामना नहीं करना चाहते हैं और हाथ में उन आशीषों को रोकने के लिए अपनी छतरी को खोल देते हैं, अर्थात पाप रूपी छतरी जो हमारे आशीषों को रोक देता है। हम उसे बंद करना या उसे दूर करना नहीं चाहते हैं। यहोशू उन्हें चुनौती देता है और चुनौती के बाद गोत्र आवंटित भूभाग पर अधिकार करने के लिए निकल पड़ते हैं। मेरे मित्रों, बिन्यामीन के गोत्र को दिया गया भाग, बिन्यामीन के गोत्र को यहूदा और एप्रेम के मध्य का भूभाग मिला। आज आप किस प्रकार के भूभाग या किस प्रकार के आशीषों का इंतजार कर रहे हैं? परमेश्वर चाहता है कि आप भी उन महान आशीषों को प्राप्त करें जिस प्रकार से उसने इसराइलियों को भूमि के रूप में, उस प्रतिज्ञा के देश के रूप में आशीष दिया। आज वह आपको आत्मिक जीवन में आनंद, शांति और खुशियां देना चाहता है। बीमारों से आपको छुटकारा देना चाहता है। आपके जीवन को कलीसिया के लिए आशीषमय बनाना चाहता है। मेरे मित्र, क्या आप चाहते हैं कि आप बैठे रहें और उन आशीषों का इंतजार करें? किसी ने कहा कि एक व्यक्ति यात्रा कर रहा था और एक पेड़ के नीचे बैठ गया और बैठते ही उसे नींद आ गई और ऊपर कुछ फल लगे हुए थे और कुछ फल जब उसके सिर पर गिरे उसने अपनी आंखों को खोला और देखा कि ऊपर फल लगे हैं, लेकिन उसने ये नहीं चाहा कि उठ करके फलों को तोड़े और खाए। वह लेटा रहा और इंतजार करता रहा कि कब फल गिरेगा, लेकिन शाम हो गई और वह एक भी फल का आनंद नहीं ले पाया। मेरे मित्र, आज हम में से कई लोग ऐसा ही जीवन जी रहे हैं, चाहते हैं कि उनके जीवन आशीषमय हो, उनके घर परिवार आशीषमय हो, लेकिन अपने जीवन को सुस्त रखे हुए हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप उठ खड़े हों, कार्य करें, उस पर विश्वास करें और अपने जीवन में उन आशीषों को ले लें। क्या आप चाहते हैं कि आप ऐसे पड़े रहें या आशीष पाएं? प्रभु आज के इस अध्ययन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे और सहायता प्रदान करे ताकि अपने जीवन के द्वारा आप भी उन गवाहियों को बांटने पाएं। आइए हम परमेश्वर से इसके लिए आशीष मांगे। जीत प्रभु, धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जिन्होंने आपके वचन को सुना है और वो चाहते हैं प्रभु कि वे भी यहोशू और कालेब के समान कार्यरत हो, आगे बढ़ें और भूमि पर अधिकार कर लें, अपने जीवन में उन आशीषों को प्राप्त कर लें। हमारी विनती है आप उनकी सहायता करें। जो दुखी हैं, निराश हैं, छुटकारा पाने की इच्छा रखते हैं, आप उनकी भी सहायता करें और होने दे प्रभु आज वे अपने जीवन में एक जयवंत जीवन को प्राप्त कर सकें, एक आनंदमय जीवन को प्राप्त कर सकें और आपका अनुसरण कर आपको महिमा दे सकें। इसमें फिर से हर एक श्रोता भाई बहनों को आपके हाथ में सौंप देते हैं। हम सबके साथ हो और निरंतर हमें अपने अनुग्रह में बनाए रखें ताकि हम आप में बलवंत किए जाएं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
तू ही मेरी जान मन में है तू, तू ही मेरी जान दिल में है तू, तू ही मेरी जिंदगी की आरज़ू है। तू ही मेरी जान मन में है तू, तू ही मेरी जान दिल में है तू, तू ही मेरी जिंदगी की आरज़ू है। जब तक ये सांसे रहेंगी तेरे ही गीत गाते रहेंगे, तू ही मेरी जिंदगी का राग है। जब तक ये सांसे रहेंगी तेरे ही गीत गाते रहेंगे, तू ही मेरी जिंदगी का राग है।
राग है, तू मन में है तू, तू ही मेरी जान।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
राजाओं का राजा है।